وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد، وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. انسانی معاشرے کی تمام مشکلات کا حل ظہور مولا ہے. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے، شب التجا ہے، شب محاسبہ نفس ہے، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آج کی جب شب بہترین دعاؤں میں سے دعا ہے فرج، اس لیے کہ تمہاری تمام مشکلات کا حل حدیث میں ہے کہ ظہور مولا، یعنی انسانی معاشرے کی تمام مشکلات کا حل مولا کا ظہور ہے. خدا کرے کہ کل کا جمعہ ہو جائے، دل کی گہرائی. اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها تبيلا. اللهم صل على وعجل فرجهم. پھر یہ دعا دعا قرآنی. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات پڑھی محمد. وعجل فرجهم. ٹاپک کرامت انسان. کل کی مجلس میں کوشش یہ کی گئی تھی لفظ کرامت کو ہم سمجھیں اچھی طرح سے، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اردو زبان یا دوسری زبانیں عربی کے مقابل میں گنگ ہیں، لنگ ہیں، عجم ہیں، अरबी का कोई जवाब नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। करामत जो उर्दू में इस्तेमाल होता है वो करामत नहीं है जो कुरान ने बताया है, अहादीस ने बताया है। उर्दू में फला वली फला औलियात उनके करामात वगैरह आप सुनते हैं, यकीनन वो करामात, लेकिन बहस हमारा उस पर नहीं है, उन मानों में नहीं है। जिस चीज को कुरान बयान कर रहा है उसको अच्छी तरह से समझें। आज ये आयत सूरह इसरा कुरान का 17th चैप्टर है, जिसकी इब्तदाई आयत मेराज रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुताल्लिक। अम्मा सल्लल्लाह वाजिल फरज, इसकी 70th यानी 70वीं आयत 770 आयत नंबर है, जिसका जो मुसलसल आप सुनते रहेंगे। आज ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन है, पहली मुहर्रम यहाँ पर हो चुकी है और शबे दो मुहर्रम है, 1442 टू बी रिकॉर्ड है जी। चांद रात है, अच्छा कल चांद, ये दो दो चांद रात होंगे, ठीक है चलिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह इसके माने के संडे हमारे पास आशो, चलिए पहली की रात, चलिए एक दिन ज्यादा आपको जहमत देने का मौका मिला सुनने का भी इंशाअल्लाह। इंसान अब हमेशा सुनते हैं मेंबरों से, यूनिक है मखलूकात इलाही में, क्रिएशन जो अल्लाह के हैं बहुत सी हैं, उनमें सबसे ज्यादा यूनिक इंसान है, उसकी खसूसियत कोई ला ही नहीं सकता। ना जमीन में खसूसियत है, ना आसमानों में खसूसियत है, ना कायनात में जो ह्यूज यूनिवर्स है 170 बिलियन गैलेक्सीज, अगर इंसान उससे कहीं बुलंद है। इंसान की बुलंदी कुरान ने यूं बयान की है, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। जब अल्लाह ने इंसान को बनाया नुतफा मुदगा अलका कसौनल इज़ाम फखलकन आखर फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से तवज्जो के साथ रहें। इब्तदाई जो नुतफा मुदगा अलका कसौनल इज़ाम, इसमें सारे लोग शरीक हैं, सारे हैवान भी शरीक हैं, सारे इंसान भी शरीक हैं। खुसूसियत इंसान की कहाँ है, फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। इंसान के पास एक मखसूस चीज है जिस पर जात परवरदिगार ये कहता है कि सारी कायनात एक तरफ है लेकिन ये इंसान एक तरफ। व्हाट इज इन इट, इसमें क्या है इस इंसान में, इसको समझें। आज जमीन में ये सलाहियत नहीं है वो इनकास कर सके इकरामों करामत इलाही को बहुत अच्छी तरह से। जमीन कायनात यूनिवर्स उनका वजूद इतना बताता है कि उनका खालिक कोई है, लेकिन जो सिफात परवरदिगार हैं उनको मुनाकिस नहीं कर सकता, उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। खा वो इनोनिमेट ऑब्जेक्ट हो, खा वो वेजिटेशन हो, खा वो हैवान हो, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते अल्लाह के सिफात। इंसान वो मखलूक है जिसमें अल्लाह ने सलाहियत इनायत फरमाई है कि वह सिफात इलाही एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह को रिफ्लेक्ट कर सके। अगर हम इसको समझें तो खुदा कौन से सिफत को चाह रहा है कि रिफ्लेक्ट करे इंसान, यह बहस है हमारी करामत इंसान, ह्यूमन एक्सेलेंस से मुताल्लिक। हमने बताया कल मिसाल दी थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी का तस्वुर कीजिए जिसमें एक टॉपिक एक फैकल्टी पे काम हो रहा है कोई साइंस की एक टॉपिक पर, तो उस यूनिवर्सिटी में तमाम चीजें जो उस टॉपिक से मुताल्लिक हैं उनकी जरूरतों का ख्याल किया जाए ताकि वो टॉपिक पूरी तरह से समझाया जा सकता है। जो प्रोफेसर्स होंगे वो टॉपिक से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं जिस जगह जा रहा हूं वहां पर एक मखसूस टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। मसलन अगर कोई यूनिवर्सिटी मखसूस कोई साइंटिफिक चीज को बयान कर बताना चाह रही है तो वो साइंटिफिक फैकल्टी है और स्टूडेंट्स भी जानते हैं और प्रोफेसर्स भी जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी काहे के लिए है। ये मिसाल अच्छी तरह समझ में आ गई। अब समझ में आ जाइए तो पूरी कायनात एक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका चलाने वाला कादिर मुतलक ज़ाते परवरदिगार है। वो कैसा है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। उसके बाद आगे बढ़कर इक़्रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ पढ़ किससे पढ़? तेरे रब से। कौन है तेरा रब? अकरम है, करामत। तो मालूम हुआ ये पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपिक जो है करामत। बहुत अच्छी तरह से समझे, पूरी यूनिवर्सिटी का टॉपिक अल्लाह ने जो बनाई है उसका टॉपिक ही करामत है। करामत ह्यूमन एक्सलेंस, वो शराफत है कल मैंने इशारा किया था जहां पर इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता। आपने फजाइल मौला में सुना है कि मौला सीने पे सवार थे वो कुल्ले कुफर के, उसने गुस्ताखी की तो मौला छोड़ गए, उसको छोड़कर टहलने लगे। ये क्या है? ये करामत इंसानी है कि इंसान हर हाल में उसकी रजा को देखे, अपनी रजा को नहीं, अपने मर्जी को नहीं, अपनी ख्वाहिशात को नहीं। चुनांचे किसी ने पूछा मौला इससे खतरनाक मौका क्या हो सकता है कि एक बड़ा जलील कातिल वो आपके मुकाबले में आया था, उसको आपने कब्जे में कर लिया था, ऐसे मौके पर आपने उसको छोड़ दिया, बहुत ही डेंजरस है, स्ट्रेटेजिकली गलत है, वॉर के खिलाफ है कि दुश्मन हाथ में आने के बाद छोड़ देना। अरे भाई तुम परेशान क्यों हो रहा है? जिसने पहले लिटाया तो उसी मतवा भी लिटा लेगा, तुम्हें परेशानी क्या है? तो मालूम है परेशानी उनकी नहीं थी, इनकी थी कि कहीं वो बला हमारी तरफ ना आ जाए। तो मौला ने कहा ना 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 ना, मैं जंग कर रहा था अल्लाह के लिए। बहुत अच्छी तरह से, मैं जंग कर रहा था किसके लिए? अल्लाह के लिए। और जब इसने गुस्ताखी की, मैंने पाकिस्तान पंजाब में कहीं पर यह बयान किया तो किसी ने कहा मौला को गुस्सा भी आता है। मैंने कहा मौला खाना भी खाते थे, रोटी भी। तो हम लोगों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत में जरा सा जो कोताही की है वो ये है कि इंसानी अकदार को हटा दिया है। नहीं, वो इंसान कामिल थे, कमाल इंसानियत अगर है तो इन्हीं घराने से मिल सकती है, किसी और घराने से नहीं। तवज्जो, बहुत अच्छी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मौला ने फरमाया जंग किसके लिए कर रहा था? फी सबीलिल्लाह। उसने जब गुस्ताखी की तो मुझे क्या आया? गुस्सा। मैंने गुस्से को पहले ठंडा किया। ये गुस्से को ठंडा करना, फी सबीलिल्लाह काम करना, ये क्या है? करामत है। यानी इंसान अपनी जिंदगी में अपने जज्बात के जरिए से जिंदगी को ना चलाए बल्कि मर्जी रब के लिए चलाए, तो अगर ये चलाता है तो उसकी ये करामत है। तो अल्लाह करीम नंबर वन, इन्नहु लकौलो रसूलिन करीम, अल्लाह भी करीम है, रसूल भी करीम है। सोहफिम मुतहरा, सोहफिम मुकर्रमा, कितने सोहफे आए, कितने बुकलेट्स आए अल्लाह की तरफ से? 104। ये चार जो हम कहते हैं ये बड़ी किताबें हैं, उससे हट कर भी 100 किताबें उनको कहते हैं सोहफ, सोहफ यानी बुकलेट्स। अब पढ़ते हैं सूरह सब्बह स्म रब्बिकल्लज़ी अअला में आखिरी आयत सोहफ इब्राहीम व मूसा। तो मालूम है ये सोहफ क्या है, सोहफ मुकर्रमा, ये सोहफ भी करामत वाले। तवज्जो, मैंने बताया यूनिवर्सिटी का पूरा फैकल्टी एक टॉपिक पे काम कर रहा है, वो टॉपिक है करामत। करामत जो टीचर है वो करीम है। टीचर कौन है इंसान का, इन्नहु लकौलु कौलु करीम। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम। तो अल्लाह भी करीम, और जिस पर आ रही है किताब लकौल रसूल करीम, और आदम से लेकर खातम तक जितने सोहफे आए हैं सोहफुम मुकर्रमा, ये पूरे करीम सोहफे हैं, इसमें एक्सेलेंस है। और ये जो आए हैं सोफरा, जो टीचर्स हैं, ये जो प्रोफेसर्स हैं, किरामिन बरारा, सफारतिन किरामिन बरारा, ये सफीर करामत हैं। इन्हें अंबिया भी सफीर करामत हैं। तो मालूम हुआ पूरा सिस्टम एक टॉपिक पर मिला हुआ है, वो टॉपिक है करामत। क्या है करामत, इंसान को मकाम हैवानियत से बुलंद कर करके उस मकाम पे पहुंचाए जहां पर इंसान अपनी जिंदगी को इस एक एक्सेलेंस पे गुजारने की कोशिश करे, जहां पर ये ना देखे कि मैं क्या चाहता हूं, ये देखे कि करामत इलाही ने मुझे क्या तकाजा किया है। तो इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसमें आईने इलाही बनने की सलाहियत है, टू बिकम ए मिरर। और ये आईना बनने की जो सलाहियत है सिर्फ इंसान में है। वो कौन सी चीज आईना बनना चाहिए, कौन सी सिफत बनना चाहिए, अल्लाह जा रहा है कि चूंकि मैं करीम हूं, जिनको भेज रहा हूं वो करीम है, कुरान करीम है, सफीर करीम है, अंबिया करीम है, मेरी यूनिवर्सिटी करीम है, कायनात करीम है, तुमको भी जो पैदा किया हूं, ये करामत को तुम हासिल करो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजिल फराजम, हाउ टू अचीव इट, इंशाल्लाह गुफ्तगू आइंदा, क्या ये मुमकिन है कि हम लोग उस मकाम करामत तक पहुंच सकें या ना पहुंच सकें, एक बहस है। लेकिन आज जो हमारी गुफ्तगू है, कुरान मजीद इंसान को मुकर्रम देखना चाहता है। ये आयत जो क्या कह रही, वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम की औलाद को क्या बनाया, मुकर्रम बनाया। क्या कैसे बनाया परवरदिगार तूने, तो सबसे अफजल कर दिया उसको। وَفَضَّلْنَاهُ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, इसी आयत का आखिरी टुकड़ा, हमने इस इंसान को फजीलत दी है, यानी ऐसी फजीलत जो दूसरों को नहीं मिली है, अक्सर को यह फजीलत नहीं मिली है, सबसे बड़ी फजीलत है। मिसाल, कुरान करीम मलाइका को भी करीम कहता है, बहुत है मेरे साथ आप लोग, मलाइका को करीम कहता है, अंबिया को करीम कहता है, अल्लाह खुद करीम है, तवज्जो, कुरान भी करीम है, फरिश्ते भी किरामन बरारा करीम है, बिल्कुल ठीक। अब खुदा यह हुक्म दे रहा है, इदा नफख्तु फीहि मिन रूही फकाउ लहू साजदीन, जब मैं अपनी रूह इस करामत में, इस करीम की रूह इसमें फूंक दूं तो तुम सजदा कर देना। तो जो लोग करीम हैं उनसे कहा जा रहा है सजदा करो, किसको सजदा करो, इसको करीम है, जो ये करीम है, जो अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ है। कौन है करीम, इन्नी जाएलुन फिल अर्द खलीफा, ये मेरा खलीफा है, यानी खलफ के माने ये मेरा वाइस जरेंस है, ये मेरा नुमाइंदा है। किस बात का नुमाइंदा है, उस करामत का नुमाइंदा है जो मैं इसको दे रहा हूं। وہ کون سی کرامت ہے کہ یہ فرشتے جو کریم ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز میں سجدہ کر رہے ہیں کہ جب تک مٹی کا بنا ہوا ہے سجدہ نہیں ہے؟ توجہ، جتنے مرتبہ ہزاروں سال پہلے بن چکا، ہر مرتبہ شیطان جاتا تھا، اگر حکم ہوتا ہے مجھے اس کو سجدہ کرنے، میں تو کرنے والا نہیں ہوں، روایتوں میں ملتا ہے، تو پہلے سے بنا ہوا ہے۔ خدا نے مٹی کے پتلے کو نہیں کہا کہ تم سجدہ کرو، نہ، اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدون، جب تم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس کو سجدہ اس وقت کرو جب میں اس پر روح پھونکوں، جیسے ہی میری روح پھونکی گئی تب تم سجدہ کرو۔ اب پورے ملائکہ جو کریم ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی کرامت اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے، فرشتے سے زیادہ اس کی کرامت ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس میں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، جس کی وجہ سے وہ سجدہ کر رہے ہیں، فضائل کا بھی ایک رخ ہے۔ فتلق آدم ربہ بکلمات فتاب علیہ، حضرت آدم و حوا نے ایک اشتباہ کیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، ربنا اننا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا خطایانا لنکونن من الخاسرین، مالک ہماری بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ نے کہا نہ، میں بخشوں گا نہیں جب تک کہ ایک چیز تم بیچ میں ادا نہ کرو۔ فتلقا، اللہ نے انسپائر کیا کچھ ناموں کو جن کے ذریعے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ کون سے نام ہیں؟ الہی بحق محمد و انت المحمود و بحق علی و انت العلی۔ تو معلوم ہوا سجدہ کون کر رہا ہے؟ ملک کر رہا ہے۔ ملک کون ہے؟ کریم ہے۔ اگر ان سے کم تر ہے تو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی کریم ہے تو کریم کریم کا سجدہ کر رہا ہے کہ نہ، آدم کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے، کہ کیا ہے؟ ذریت آدم میں کچھ ایسے انوار مقدسات ہیں جو ساری دنیا میں روشن تر ہوں گے، ان انوار کے ارواح بھی اسی ظلم میں موجود ہیں۔ سجدہ حقیقت میں محمد، صلوات پڑھیے محمد وال محمد، سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ بات کو سمجھیے۔ فتلقا آدم ربہ، آدم ربہ، ذات پروردگار نے تلقین کی، تلقین کے معنی بتایا کہ تم اگر توبہ چاہتے ہو ختم کرو، تمہارا اپنے گناہوں کو صاف کرو، تو پہلے کچھ کلمات تم کو سکھائے جا رہے ہیں۔ ایجپٹ کا ایک سنی عالم کہتا ہے اس ایک آیت نے مجھے شیعہ بنا دی۔ میں نے جب تلاش شروع کیا کہ یہ تلقا آدم ربہ، پروردگار نے، رب نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، میں نے تلاش کرنا شروع کیا کلمات کون سے ہیں جس کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی، کلمات کون سے ہیں، جب پتا چلا ہمارے ہی کتابوں میں یہ موجود ہے، محمد و علی و فاطمہ، حسن و حسین، جب ان کا نام آدم سے پہلے ہے تو ان کو کیوں نہ مانو؟ ایک غیر، اب ہمارے لوگ سوال کریں تو ایک پریشانی کی بات ہے، یہ کون غیر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں مکتب اہل بیت کو اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ میری ہی کتابوں میں ان کا تذکرہ اس عظمت، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، وعجل فرج۔ جب یہ مثالیں دی جاتی ہیں تو بات کو اور واضح کیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انی ذاہب الى ربی سیحدین، ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ غور کیجئے اچھی طرح سے، انی ذاہب، ذاہب جا رہا ہوں، جا رہا ہوں، جاتا رہوں گا، ذہب کے معنی جانا، چلا گیا، ذاہب میں خود جا رہا ہوں، اس میں فاعل جا رہا ہوں، پاس میں بھی اب بھی اور اب بھی، ایک کنٹینیوٹی ہے میری جرنی میں، किधर जा रहा हूं, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, किधर जा रहा हूं मैं, अपने रब की तरफ, ताकि वो हिदायत करे। हुक्म परवरदिगार हुआ, हिजरत करो कहां से, फलस्तीन से, कहां जाओ, ऐसे लक दक मैदान, जब वहां पहुंचे तो पानी नहीं है। फर्ज कीजिए भाई, मिसाल देता हूं मैं, मेरे ही घर वालों, अगर आप ये कहेंगे इस कनाडा से चलो वापिस, चलो कहां लेके जा रहे हो, चलो एक लक दक मैदान में जाना है, वहां पर तबलीग करना है या दिया दीन का काम करना है, तो तुम्हारे जॉब का क्या होगा यार, मेरा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, ये सवाल उभर देंगे नहीं है। ज़ाते परवरदिगार ने जैसे ही हुक्म दिया कि निकलो फलस्तीन से, जाओ मकाम है मक्का की तरफ, उम्मुल कुरा की तरफ, तो हजरत इब्राहिम अपनी मुख्तसर सी फैमिली, कौन, हाजर, हम लोग हाजरा कहते हैं, हाजर और उनका बेटा छोटा सा इस्माइल, दूध पीता बच्चा, ये छोटा सा फैमिली, ये छोटी सी फैमिली निकल करके पहुंची वहां पर। पहुंचने के बाद रब्बी इन्नी अस्कंतो मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरे ज़ीज़र, परवरदिगारा मैं अपनी ज़ुर्रियत को यानी छोटी सी फैमिली को एक ऐसी वादी में छोड़ रहा हूं जिसमें कल्टीवेशन का नाम नहीं है, कल्टीवेशन के लिए पानी का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पे छोड़ रहा हूं, लेकिन चूंकि तेरा हुक्म है, चूंकि तेरा हुक्म है, तेरा हुक्म की पाबंदी मेरी जरूरी है, तो मैं ये छोड़ रहा हूं, तू देख ले। हजरत इब्राहिम टोटली सरेंडर हैं और यकीन है कि इस करामत इंसानी को ये हासिल करेंगे। तारीखें कहती है कि आपने देखा कि हजरत इस्माइल के पैरों के नीचे से ऐसा चश्मा फूटा जिसको जमजम कहते हैं। जमजम के लिए साइंटिफिक दुनिया कहती है जितने मिनरल्स जमजम में मौजूद हैं किसी पानी में मौजूद नहीं हैं, जितने मिनरल्स, और कई फोर्स का मिशन लगाया गया कि इसको खींचा जाए, देखा जाए कि खत्म किया जाए। पहाड़ी में पत्थर से पानी अल्लाह ने निकाला, उसको खत्म नहीं कर सका, कितना ही फोर्स का निकालो मगर पानी निकलता चला जाता है। अभी तक उसकी तह मालूम नहीं है। खुश्क मैदान में नबी के कदमों की खाक के जरिए से, कदमों की ठोकर के जरिए से जब पानी निकल सकता है, तो उस खुश्क मैदान में जहां पर नवासे हुसैन नवासे रिसालत शहीद हो रहा हो, वहां से क्या फूटेगा, का करबला जन्नत है कायदा। तो यहां से अगर दीन किसी को सीखना है तो करबला से सीखना पड़ेगा, सब मिलेंगे। क्या है करबला? करामत की इंतहा का नाम है। अस्सलाम वालेकुम या वारिस आदम सफवतिल्लाह, या वारिस नूह नबीइल्लाह, या वारिस इब्राहिम खलीलिल्लाह। तो मालूम है अगर किरामन बररा को देखना है तो उसकी जड़ को अगर देखना है, उसकी असल को देखना है, तो हुसैन इब्न अली। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थक गए आप लोग? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। वाजिल फराजा, जब तक इंसान अपने आप को, मसलन आपको मिसाल देता हूं और बात समझ में हो जाएगी, एक कोविड-19 जब से आया है तकरीबन 5 महीने के करीब यहां पर बंद रहा, सारे मराकज बंद रहे, अब इजाजत दी गई तो रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है भाई? सोशल डिस्टेंस हो और मुंह पर आपके मास्क हो। अब की इस मुहर्रम में आप लोग दुआ कीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम लोग जज्बात पे ना आए, मोमिनीन को खुदा इंशाल्लाह महफूज रखे, इसलिए कि ये रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ यहां के लिए नहीं, हर जगह के लिए। सोशल डिस्टेंस, चेहरे पे मास्क, अब समझ में आ रहा है क्यों भाई, पूछे क्यों, कई खतरनाक मर्ज है, एक ऐसा जरसूमा है नजर नहीं आता है लेकिन हमला कर देता है। इससे बचने का वाहिद तरीका है कि पहले डिस्टेंस रखो। हम जब कहते थे ना महरा लगा करके बात करना पड़ता है और हाथ देना पड़ता है, बाकायदा शेक हैंड करना पड़ता, नहीं करेंगे तो हम लोगों को बदतमीज कहते हैं, अखलाक नहीं है। अब इनको भी अक्ल आ गई, अब इन्हें भी अक्ल आ गई कि अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से इंसान में बीमारियां फैलती हों, तुम्हें मालूम हो चुका है कि एक जरसूमा तुम्हें मौत के घाट उतार सकता है, इसलिए तुम इतने रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, तो ज़ाते परवरदिगार जो खालिक़े इंसान हैं, करामते इंसानी के लिए अपनी ही कजिन से कहा कि ये नामहरम है, तुम जुदा होना उससे जरूरी है, उसका पर्दा करना जरूरी है, तुम्हें समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि करामत ही को तुमने नहीं समझा। करामत इंसानी इंसान नहीं समझ पाया, अगर समझ जा तो ये खुद ये जरसूमे COVID-19 जिसको कहते हैं, ये इतना बड़ा सबक है कि सारी कायनात बज़ात परवरदिगार पूछ रहा है लेमन मुल्क लियो, किसका मुल्क है भाई, डोमेन किसका है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री सबसे ज्यादा वॉनरेबल है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो हम लोगों को आदत ही है मुश्किलात में पलना जीना मरना रहना, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान यह है। तो मालूम हुआ आज खुदा पूछ रहा है किसका मुल्क है, डोमेन बिलोंग्स टू होम, आवाज कुदरत एक ही आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल अहद। तो अजीजा निगरामी दीन ज़ाते परवरदिगार का है, ये दीन की खसूसियत यह है, इसमें अल्लाह चाहता है कि इंसान को करीम बनाए। इस करामत के लिए ज़ाते परवरदिगार मिसालें दी हैं आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर क़यामत तक, और तमाम मिसालों में अतम में भी मिसाल हम फातिमा व अबूहा व बालोहा व बन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। मैं बेहतर सलवात पढ़ सकते हैं आप लोग। मैंने एक मिसाल दी थी और फिर मिसाल देता हूँ, ये जरा अच्छी तरह समझिए। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ ये कहूँगी इमाम ज़माना आपसे ये पूछ रहे हैं अजल अल्लाह ताला फरजा, अब क्या चाहते हैं सोचिए। इमाम ये फरमा रहे हैं कि पूछो भाई मोमिनीन से क्या चाहते हैं वो लोग, हमारी परवाज़ क्या होगी, हमारी ख्वाहिशों की परवाज़ क्या होगी, घर दार जिंदगी है ना। रिवायतों में है कि सरकार ने फरमाया फातिमा इस वक्त जिब्राइल तशरीफ फरमा है मेरे पहलू में, अल्लाह तुम पर दुरूद व सलाम भेज रहा है, अल्लाह पूछ रहा है फातिमा से पूछो क्या चाहती। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से इन वाकयात को सिर्फ सरसरी निगाह से मत देखिए, ज़ाते परवरदिगार पूछ रहा है कि फातिमा से पूछो कि क्या चाहती हैं। शहजादी ने कहा मुझे वजह परवरदिगार की ज़ियारत चाहिए, लिकाए परवरदिगार चाहिए, मुलाकात परवरदिगार चाहिए। हम समझ में नहीं पाते ये लिका क्या है, ये जियारत क्या है, अल्लाह के चेहरे की जियारत क्या है, आज तक हम समझ नहीं पाते। लेकिन शहजादी ने बताया इंसान की करामत जो मेराज तक जा सकती है वो एक ही है कि वो अल्लाह से मुलाकात करे। तो रोजाना जो हम जो कहते हैं कुर्बतन इलल्लाह कुर्बतन इलल्लाह, योर डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारा, सुबह हमने कुर्बतन इलल्लाह कहा, फिर दोपहर में कुर्बतन इलल्लाह कहा, तो मालूम है दोपहर में जब कुर्बतन इलल्लाह कहा तो सुबह और दोपहर के दरमियान हमारा फासला अल्लाह के पास करीब होना चाहिए। किस चीज से करीब होना चाहिए, वो अखलाकी करामत, इंसान करीम बनता चला जाए, इतना करीम बने कि दुनिया घर में रहने वाले परेशान ना हो। आजकल तो घरों में सभी लोग रहते हैं माशाल्लाह, पूरी फैमिली रहती है, अगर हमारे पास वो करामत ना हो तो मुमकिन है कि घर वाले ही हमारी जिंदगी से परेशान हो जाएं। इसीलिए ज़ाते परवरदिगार ने कहा इस दुआ को पढ़ो, रब अल्लाहुम्मा हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुन लना, परवरदिगारा हमारे अज़वाज हमारे बच्चों में ऐसी जिंदगी बना बता दे कि जिनके देखने के बाद हमारे आंखों में ठंडक, हमारे आंखों वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, परवरदिगारा मुत्तकीन के लिए हमारा हमें इमाम करार दे। ये दुआ कितनी अजीम दुआ है, यानी हम लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह से घर जाएं। अल्लाह ये करे करना तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो कि ज़ौजा तुम्हारा इंतजार करे, शौहर बीवी से मुलाकात का इंतजार करे, बीवी शौहर से मुलाकात का इंतजार करे। कब यह हो सकता है? करामात इंसानी इतने बुलंद हो जाएं कि आपस में मुलाकात को हम बोरिंग ना समझे बल्कि रहमत इलाही का जरिया समझे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अव्वलीन चीज जिसकी वजह से करामत इलाही इंसान को दी गई है वो क्या है? इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम सजदा करो इसको। किसको सजदा करो? आदम को सजदा करो। क्यों भाई आदम को सजदा करें? कौन सजदा करे? मलाइका सजदा करें। क्या चीज इसमें मौजूद है? वो करामत मौजूद है। वो करामत क्या है? वो उसका इल्म। जब अल्लाह ने कहा कि मैं जमीन पर ये खलीफा बना रहा हूं, अतजलो फीहा मा युफसिदु फीहा वो यस्फिकु दिमा नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, परवरदिगारा क्या तू उसको खलीफा बना रहा है जो जमीन पर फसाद बरपा करे? हम तेरी तस्बीह करते हैं। यानी इनडायरेक्ट ये पूछ कह रहे हैं कि हमें बना दो खलीफा। तथा परवरदिगार ने कहा इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं तुम जानते नहीं हो। चुना जजात परवरदिगार ने कहा बताओ भाई अंबेउनी बे अस्माए हाउलाए, मैंने जो नाम सिखाए उनको सुना दो बता दो। तो तमाम मलाइका ने कहा रब्बना ला इल्म लना मा अल्लम इल्ला मा अल्लम तना, जितना तूने हमें दिया है उतना ही इल्म है, उससे ज्यादा हमें इल्म नहीं है। अल्लाह ने आदम से कहा कि तुम सुना दो। आदम ने गिनाना शुरू किया वो नाम क्या है। पूछा गया कि वो नाम क्या है, कि वही नाम फिर पलट कर आए मोहम्मद आले मोहम्मद। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। खुदा इंशाल्लाह तौफीक दे के हम लोग इस मौजू पर भी कुछ काम करें और हमारे पास जिंदगी हमारी उस तरह से हो जाए कि जिसके वजह से हमारी जिंदगी की वजह से दूसरा भी इंसान हमसे लगाव रख सके। इसीलिए हदीस में है कि खालतु मुखालतन इन तईशु तो हसनु व इन तमूतु तो हसनु, लोगों से इस तरह से रहो कि जब जियो तो लोग कहेंगे इसके साथ मिलना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए, जब इंतकाल हो जाए तो लोग मिस करें। ये कौन सी चीज है इसमें? वो करामत नफ्स है जिसके जरिए से मानूस होती है इंसानियत उस ज़ात से। यही वजह है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हत्ता दुश्मन भी चाहता था कि आपसे मुलाकात करे, ना मानने वाला भी चाहता था कि आपसे मुलाकात करे। ना मानने वाले भी जानते थे कि इस घराने में जो बात है किसी घराने में मौजूद नहीं है। अफसोस है कि आज हम लोग फर्श अज़ा को बिछा चुके हैं और बहुत ही खतरनाक यह है कि रिस्ट्रिक्शन हमें बताया गया कि इससे ज्यादा नंबर नहीं। मैंने कल बताया था मैं इंशाअल्लाह जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं घर में काली चादर बिछाएं और एक छोटा सा मरसिया पढ़ें, बच्चों को बताएं कि यह फर्श अज़ा है। ये फर्श अज़ा इसलिए बिछाई जा रही है कि करबला में एक शख्स था जिसका नाम हुसैन है, जिसने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपना छोटा सा घर उसकी बारगाह में कुर्बान कर दिया। और मुख्तसर से घर को कुर्बान किया लेकिन उसका हदफ इतना बुलंद था कि वो मुख्तसर नहीं था, कायनात यहाँ पर जमा हो गई थी। अजीज़ान गिरामी आज़ादारी के सिलसिले में रिवायतों में है कि पांचवें इमाम से हत्ता सैयद सज्जाद की जिंदगी से लेकर के हर इमाम के पास जैसे ही 29 जिलहज यानी चांद रात को कोई पहुंचता था मोमिन, कहते थे कल मालूम है कि कौन सा दिन है, क्या दिन आ रहा है तुम्हें पता है? मौला मालूम। इमाम रजा फरमाते हैं कि अपने चाहने वाले से कि मैंने मेरे बाबा को आशूर तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। क्या चीज है आशूर तक मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। और ये रिवायत न सिर्फ इस हर एक इमाम के लिए, इसीलिए इमाम सादिक फरमाते हैं कि इमाम हुसैन पर गिरिया گناہان کبیرہ کا حل, ذنوب العظام. روایتوں میں ہے کہ اگر گناہان کبیرہ کو بخشانا ہے تو بہترین یہ ہے کہ حسین پر گریا. اور ہمارے پاس مسلسل آواز آپ نے سنا ہے کہ جیسے ہی حسین کی آواز آتی ہے ایک دکیاری ماں بھی آ جاتی ہے, ہائے حسین, پیاسے حسین, دعا دیتی ہے, خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ. میں کہا کرتا ہوں شہزادی دولت کی دعا دیجئے, مال و حشم کی دعا دیجئے, مال و منال کی دعا دیجئے. یا آپ یہ دعا کیوں دے رہی ہیں, خدایا پروردگارا اس کی اولاد کو سلامت رکھ, کا جواب ملے گا تجھے نہیں معلوم, کربلا میں میرا گھر خالی ہو گیا. شبیب ابن شبیب, ریان ابن شبیب کہتا ہے کہ پہلی محرم تھی, امام رضا کے پاس میں پہنچا اور امام کی حالت دیگرگون تھی. ابن شبیب, معلوم ہے کون سا دن ہے؟ مولا ہاں عشرہ محرم شروع ہو چکا ہے. اور کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا عشرہ محرم شروع ہو چکا ہے. فَإِن كُنْتَ بَاكِيًا لِلشَّاءِ فَابْكِ لِلْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ. اے شبیب کے بیٹے, اگر تیرا دل کبھی رونے کو چاہے دنیا پہ مت رو, جب بھی تیرا دل رونے کی طرف مائل ہو تو کہو ہائے حسین. کل ہی کوئی کسی نے ای میل میں مجھ سے کہا کہ مولانا ہم نے مجلس سنی, یقیناً مصائب تھے لیکن محرم میں طبیعت چاہتی ہے ذرا زیادہ, عشرے میں طبیعت چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ شہزادی کو پرسا دے, دو چار جملے اور زیادہ کہیے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں. میں کہتا ہوں کہ اس سال رونے کا اور زیادہ ہیلا ہو گیا, جب بھی اپنے خانوادے کو دیکھتا ہوں تو کربلا کا وہ خانوادہ یاد آتا ہے جس میں لق و دق میدان میں حسین لے جا کر کے قربان گاہ میں کبھی علی اکبر کو پیش کر رہے ہیں, کبھی قاسم کو پیش کر رہے ہیں, کبھی گھر والوں کو. عزیزان گرامی, ابن شبیب, ان کنت باکیاً لشائیں فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے شبیب کے بیٹے ریان, اگر رونا آئے تو کسی اور چیز پہ مت رو, یہ کہو ہائے حسین. کیوں رو؟ مولا نے علت بتائی, اس لیے کہ میرا بابا اس طرح سے ذبح ہوا جس طرح سے فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشَ, اس طرح سے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے, ایسے ذبح ہوا میرا جد جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں. عجیب و غریب مثال ہے, امام کی مثال کوئی معمولی مثال نہیں ہوتی. امام یہ فرما رہے ہیں بکروں کی طرح. کیوں کہا بکروں کی طرح؟ کہ جب بکرا ذبح ہوتا ہے سامنے سے لوگ جاتے ہیں, کوئی روکتا نہیں ہے, ارے جاندار کو کیسے ذبح کر رہے ہو, حسین ذبح ہو رہا تھا, کوئی روکنے والا اجرکم علی اللہ. قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہیں, تاریخ کہتی ہے امام حسین نے ایک سلام کا جواب دیا. کرامت نفس کے لیے واقعات بھی بہت اچھے. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں جب حضرت مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا, حضرت مسلم نے ایک جملہ کہا, کہتے کہ ایک میری وصیت. تو وصیت کیا ہے؟ کہ یہ میری زرہ ہے اور یہ میرا گھوڑا, یہ میری تلوار, اور جب سے میں یہاں آیا ہوں مقروض ہو چکا ہوں, ان چیزوں کو بیچ کر یہ میرا قرضہ ادا کر. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ جو امام کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا اور امام کا پیسہ موجود تھا, حقوق موجود تھے, اس کو حضرت مسلم نے اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کیا, حتی وصیت کی کہ جو قرضہ میں نے لیا ہے میری اپنی زندگی کے لیے اس کو اس کے ذریعے سے ادا کرو. یہ کرامت انسانی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ قاتلوں کو جب وصیتیں کی ہیں ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ بس یہ کہہ دو کہ میں نے جب یہاں آیا تھا مولا حسین کو میں نے خط لکھ دیا تھا کہ وہ کوفے کی طرف آئیں, مولا سے خواہش کرو کہ اب کوفہ کا رخ نہ کریں, اب کدھر کا رخ نہ کریں, اب کوئی ان کا چاہنے والا موجود نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں مولا نے علیک السلام علیک السلام علیک السلام کہا. ایک مرتبہ پوچھا زینب نے کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں, امام نے کہا بہن دیکھو گی کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا, زمین کوفہ بلند ہوئی, مسلم کوٹھے سے گرائے جا رہے تھے. السلام علیک یا ابا عبداللہ. ایک مرتبہ سلام کرنے کے بعد امام حسین نے حکم دیا خیمہ کو نصب کیا جائے, قیام نصب ہوئے اور بچی جو مسلم کی تھی اس کو گود میں بٹھایا, اس کے بوندے پہنائے اور سینے سے لگایا. بنی ہاشم کی بچی تھی, سمجھ گئی کوئی بات ہوئی ہے. چچا جان آپ میرے سے ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کے ساتھ پیش آتا ہے, کیا میرا بابا چلا گیا؟ امام حسین نے بھری آنکھوں سے کہا بیٹی آج سے مجھے تمہیں اپنا باپ سمجھو, مجھے تم اپنا باپ سمجھو, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں مولا اگر سکینہ قریب ہے تو ہٹا دیجئے, اس کو یہ قصہ یاد رہ جائے گا جس کا باپ مارا جاتا ہے اس کے بچوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے, اس کو تسلی دی جاتی ہے, اس کو تماچے مارے نہیں جاتے. اے مولا یہ کیسی غربت ہے, ادھر حسین کی شہادت ہوئی اے بجائے اس کے کہ کوئی تسلی دیتا کوئی تماچے مارتا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ان لله وانا اليه راجعون. خدایا پروردگارا ان عظیم مجلسوں میں تیری عظمت کا تذکرہ ہے, کرامت کا تذکرہ ہے. مالک ہمارے نفسوں میں اس صفت کو اجاگر کر دے. پروردگارا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار یہ مرض جو دنیا میں پھیلا ہوا بحق محمد وآل محمد انسانی معاشرے سے جلد نکال دے. پروردگار اس کا تدارک, اس کا ویکسینیشن میری بہت دلی گہرائی دعا ہے, گہری دعا یہ ہے مالک ہمارے نوجوان سائنٹسٹ کے ہاتھ میں دے دے. خدایا پروردگار بحق محمد وآل محمد جو اس مرض میں مریض ہیں مومنین ان کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں بن بہ کے ہیں ان کی بہ کر دے, صفوف مسلمین کو متحد کر دے, ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے. خدایا پروردگارا جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما, ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. پروردگارا جنہوں نے التماس دعا کہا خصوصاً ایک ڈاکٹر صاحب وہ بیمار ہیں اور اس مرض میں مبتلا ہیں, مالک ان کی فیملی اسی طرح سے دوسرے مومنین جن کا نام لیا گیا نہ لیا گیا سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما, ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین